समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर दैनिक कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आप तक लाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। खेल जगत की हलचल भी होगी और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा हम उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी चर्चा करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के आज के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। और हस्बे दस्तूर, जब नाम है शो का परिक्रमा, तो जाहिर सी बात है विल गो टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर पोरिंग इन फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। वो सब कुछ तो होगा ही, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi replies to the motion of thanks to President's address in the Rajya Sabha.
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका से निर्वासित भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में वक्तव्य दिया, कहा ये एक सामान्य प्रक्रिया जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किया गया है।
Over 8,000 tribal youths from across the country taking part in Janjatiya Yuva Kumbh at Mahakumbh in Prayagraj today.
अमरीकी डाक सेवा ने चीन और हांगकांग से आने वाले पार्सल पर रोक लगाने के फैसले को वापस लिया।
And Mukesh, those were the headlines, but now first let's listen to the PM's address and the Prime Minister's replying to the motion of thanks in the upper house.
जी बिल्कुल।
बहुत बड़ी सफलता मिली, हमने एक योजना और भी बनाई, स्टैंड अप इंडिया, जिसका मकसद था एससी एसटी समुदाय के हमारे भाई बहन और कोई भी समाज की महिला उसको बैंक से 1 करोड़ रुपए का बिना गारंटी को लोन, ताकि वो अपना कारोबार। और हमने इस बार बजट में इसको डबल कर दिया है और मैंने देखा है कि लाखों ऐसे नौजवान इस वंचित समुदाय से या लाखों बहनें आज मुद्रा योजना के द्वारा अपना कारोबार करना शुरू किया है और खुद को तो रोजगार पाया ही, लेकिन उन्होंने किसी एक दो और लोगों को भी रोजगार दिया है। आदरणीय सभापति जी, हर कारीगर का सशक्तिकरण, हर समुदाय का सशक्तिकरण और जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करने का काम मुद्रा योजना के माध्यम से हमने किया है।
That was the PM's address in the Rajya Sabha. And moving forward, now it's time for Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. Today we're going to talk about Janjatiya Sanskritik Samagam 2025 and International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation.
Vikasita Ga Vikasita Odisha is an
We beg your pardon for that technical error. And the Janjatiya Yuva Kumbh is being organized under the Janjatiya Sanskritik Samagam 2025 at Mahakumbh in Prayagraj today. Our correspondent reports that more than 8,000 tribal youths from across the country are participating in the Yuva Kumbh.
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत 5 दिनों तक चलने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य जनजाति मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं वह युवाओं के कारण हुए हैं। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें।
पर्दे के पीछे से जो समाज को विभ्रमित करने वाली राष्ट्र धर्म संस्कृति विरोधी शक्तियां हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। पहचान कर हमको सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हमको सामूहिक रूप से अपने विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम प्रयत्न करने की आवश्यकता है।
इस कार्यक्रम के दौरान सभी जनजाति युवाओं ने जनजाति संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इस जनजाति सांस्कृतिक समागम के दौरान देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
And now let's hear more from the Yuva who are taking part in the Janjati Sanskritik Samagam. Let's hear from Selina, Jitendra, Firoz and Dolly.
मैं सलीना नेताम छत्तीसगढ़ बस्तर से आई हूँ। यहाँ पर महाकुंभ मेला लगा हुआ है, इसमें हम लोग जनजातीय युवा कुंभ में सम्मिलित हुए हैं। इसमें हम लोगों ने अलग अलग देश से आए हुए संस्कृति को बचाने के लिए हम किस प्रकार से अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं और उस संस्कृति के माध्यम से हम अपने देश को किस प्रकार से विकसित देश बना सकते हैं, उसमें हिस्सा लेने के लिए हम लोग आए। बहुत अच्छा लगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आए हुए युवा कलाकार अपनी संस्कृति को लेके आए हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 144 साल में यह महाकुंभ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में।
मैं जितेंद्र कुमार ध्रुव, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं गोंड जनजाति से हूं और यह हमारा सौभाग्य है कि 144 वर्षों बाद यह कुंभ का आयोजन हुआ। इस दिव्य भव्य आयोजन में मुझे दिली इच्छा थी कि मैं इसमें शामिल हूं। हम छत्तीसगढ़ से 1000 जनजाति युवक युवतियों इस कार्यक्रम में लेके आए हैं। बहुत सारे जनजाति युवक युवतियां हमारे साथ आने को तैयार थे पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यवस्था नहीं बनी, इस कारण वो नहीं आ पाए। हम सभी जनजाति समाज के लोग सनातन संस्कृति को बहुत ही हृदय के साथ उसको मजबूती से आगे ले जा रहे हैं और दृढ़ संकल्प लेते हैं कि सनातन संस्कृति के लिए हमेशा उसके एक वाहक के रूप में को आगे बढ़ाते रहेंगे।
मैं फिरोज खुशहाल विके नागपुर महानगर महाराष्ट्र से हूं और इस जनजाति युवा कुंभ में सहभाग लेने के लिए आया हूं। हजारों की संख्या में हमारे सभी जनजाति बंधु यहां उपस्थित हुए। इस महाकुंभ में हम सभी ने एक दृढ़ संकल्प लिया, इस राष्ट्र का सर्वांगीण उन्नति के लिए हम जनजाति बंधु अपने अतिथि क्षेत्र में कार्य करेंगे। इस भाव से लेकर सभी हम बंधु यहां से जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस कुंभ के माध्यम से हमारे सभी जनजाति बंधु प्रेरित हुए होंगे और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे।
मैं छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग से हूँ। मैं डॉली ठाकुर। जनजाति कुंभ मेला में मैं शामिल हुई। यहाँ पर देश भर के हर राज्यों से आए हैं और हम भी अपने देश को आगे बढ़ाने में आगे रहेंगे और अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमें नए भारत बनाने के लिए युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
और सहरा, हमारे श्रोताओं को बिरसा मुंडा के बारे में पता ही होगा। उनका जन्म 1875 में झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था और उनका जन्म का नाम दाऊद मुंडा था। वे छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो कि वर्तमान में झारखंड के मुंडा जनजाति से थे।
Yes, Birsa Munda took up the campaign against alcoholism, witchcraft and sorcery and promoted among people awareness about cleanliness. He educated the tribals about British atrocities and made them aware of their culture and heritage regarding community ownership of land. He also provided leadership to the Munda Rebellion, which is also known as the Ulgulan or the Great Tumult movement.
मुंडा जनजाति के लिए उनके योगदान के कारण उन्हें भगवान यानी ईश्वर के रूप में याद किया जाता है और उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता की उपाधि दी गई थी। भारत के जनजातीय समुदायों के लिए किए गए इस तरह के योगदान के सम्मान में उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे और कई शैक्षणिक प्रतिष्ठानों सहित कई संस्थानों और स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
Yes, indeed, the story of his life inspires many people and also inspires movements for indigenous rights and justice within India. And now if we come to the second topic in our segment today, well, today is International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation.
बिल्कुल, वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य इस प्रथा के उन्मूलन के प्रयासों को बढ़ावा देना है।
That's true. Female genital mutilation or FGM comprises all procedures that involve altering or injuring the female genitalia for non-medical reasons and is recognized internationally as a violation of human rights, the health and integrity of girls and women. Girls who undergo FGM face short-term complications such as severe pain, shock, excessive bleeding, infections and difficulty in passing urine, as well as long-term consequences for their sexual and reproductive health and also mental health.
बिल्कुल, और वर्तमान में 23 करोड़ से अधिक लड़कियां और महिलाएं हैं जो FGM से बची हुई हैं और उन्हें उचित देखभाल सेवाओं तक पहुंच की आवश्यकता है। अनुमान है कि अगर इस कार्रवाई में तेजी नहीं लाई गई तो वर्ष 2030 तक 2,70,00,000 अतिरिक्त लड़कियां FGM से प्रभावित होंगी। हालांकि मुख्य रूप से अफ्रीका और मध्य पूर्व के 30 देशों में केंद्रित है और महिला जननांग विकृति एक सार्वभौमिक समस्या है और एशिया तथा लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में भी इसका प्रचलन है और पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाली अप्रवासी आबादी के बीच महिला जननांग विकृति अब भी जारी है.
That's quite sad, and those numbers are still staggering. And in fact, over the last three decades, the prevalence of FGM has declined globally. Today, a girl is one-third less likely to undergo FGM. That was much less than what was 30 years ago. And however, sustaining these achievements in the face of humanitarian crisis, such as disease outbreak, climate change, armed conflict and more could cause a rollback of the progress towards achieving gender equality and elimination of FGM by 2030.
बिल्कुल, महिला जननांग विकृति के उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए समन्वित और व्यवस्थित प्रयासों की आवश्यकता है और इसमें पूरे समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए तथा मानव अधिकारों, लैंगिक समानता, यौन शिक्षा और उन महिलाओं तथा लड़कियों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो इसके परिणामों से पीड़ित हैं.
Women, despite working as caregivers and caretakers both in and outside the household, they are the most neglected lot. Women's health needs to be in the forefront and also at the center stage, you can say. However, it's unfortunate that it often is not, but it needs to be.
बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण महिलाओं में कुछ स्थितियों का कम निदान या गलत निदान हो सकता है, जिससे उपचार में देरी हो सकती है और स्वास्थ्य परिणाम खराब हो सकते हैं. ऐतिहासिक रूप से चिकित्सा अनुसंधान अक्सर पुरुष विषयों पर केंद्रित रहा है, जिसके कारण महिलाओं में रोग कैसे प्रकट होते हैं और कैसे प्रगति करते हैं इसकी समझ में कमी आई है.
प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ ऑफ फीमेल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड मस्ट बी स्ट्रेस्ड अपॉन. The health interventions must focus on bolstering and meeting women's health needs. This day provides an opportunity to highlight progress and raise awareness to end this harmful practice. And I'd like to end with a quote from Michelle Obama. Communities and countries and ultimately the world are only as strong as the health of their women.
और कार्यक्रम में वक्त हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. इस क्रम में सबसे पहले ओडिशा चलें.
Absolutely, Mukesh. The Odisha government yesterday launched the transformative umbrella scheme called Bikashita Gaon Bikashita Odisha with a provision of 5,000 crore rupees aiming to bridge critical development gaps in the villages. The scheme will focus on building rural road infrastructure, creation of civic communities and improvement of sports and educational infrastructure to boost tourism at the rural level. More details from our Cuttack correspondent.
Vikasita Gaon Vikasita Odisha is an ambitious scheme of BJP government led by Chief Minister Mohan Charan Majhi, which will boost not only rural economy but also enhance the quality life of rural people. Issuing guidelines for the scheme, the Panchayat Raj and Drinking Water Department said road connectivity to unconnected roads and development of both inter and intra-village roads will be of prime importance under the scheme. It would also cover civic amenities, sports and educational facilities and micro-tourism development to boost rural infrastructure and enhance the quality of life in villages. The state government will adopt a participatory process starting from Gram Sabhas to ensure the projects address real community needs. A five-year prospective plan will be prepared through the Gram Sabhas. The plan will be submitted to the blocks by the Gram Panchayats. Basing on the prospective plan, the annual action plan for each financial year will be prepared by the blocks. The guidelines stated that the project list will be scrutinized by a technical committee at the block level basing on feasibility, admissibility and financial limit. The Panchayat Samiti will recommend the scrutinized project list to the district collector for approval. Besides, 30% of the allocation will be utilized for the construction of roads, bridges and culverts in rural Odisha, both inter and intra-village roads. Unconnected villages, PVDG habitations, Naxal-dominated and remote hill areas will also be covered under the scheme for ensuring connectivity. The guidelines stated that maximum up to 5% of the total sanctioned amount can be utilized for the new innovative projects for community use. Besides, projects of similar nature taken up by the PR and DW and other departments will also be conversed under the scheme. Also, projects worth less than Rs 3 lakh will not be taken up under the scheme. With Tapan Maharana, Smriti Rekha Taraniya from Akashvani, Cuttack.
और ओडिशा से अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पालपुर कूनू राष्ट्रीय उद्यान में कल 5 और चीतों को बाड़े से खुले जंगल में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2 चीते खुले जंगल में छोड़े थे, जिससे वन्य जीवन में चीतों की पुनः बसावट हुई थी। अब ये 7 चीते पर्यटकों को अपनी रफ्तार से रोमांचित करेंगे। और जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही मादा चीता आशा, धीरा और आशा के 3 शावकों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा, वे कुलांचे भरते हुए नजरों से ओझल हो गए। आखिर स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं होगी। अब वे अपनी रफ्तार और हौसलों से न केवल जंगल में अपनी सत्ता कायम करेंगे, बल्कि चीता पुनर्स्थापन योजना को और भी विस्तार देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चीतों की पुनर्स्थापना से कूनों की पर्यटन के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य कि आज 5 चीतों को जंगल में छोड़ने का अवसर मिला है।
पिछले समय प्रधानमंत्री ने 2 चीता छोड़ करके एक तरह से वन्य जीवन में चीतों की पुनर्वसाहट का नया काम चालू किया था। 5 चीतों को दोबारा छोड़ने का संकल्प हुआ है, जिसमें एक मादा और उसके साथ 3 बच्चे और दूसरी एक मादा जिसको अलग से छोड़ा जाता है। ये जो चीते से जंगल आबाद हुआ है, परमात्मा करे ये और अच्छे से बढ़े। शासकीय स्तर पर जो प्रबंधन किए जा रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। आने वाले समय में पर्यटकों से लेकर कई सारे सेक्टर में इसका नाम और अलग प्रकार से जाना जाएगा।
कूनो नेशनल पार्क से अभी तक 7 चीतों को जंगल में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा गया है। कूनो में वीरा के 2 नए शावकों को मिलाकर कुल 26 चीते हो गए हैं। इन चीतों की निगरानी के लिए 2 दल गठित किए गए हैं, जो छोड़े गए शावकों की निगरानी और सुरक्षा करेंगे। इस साल गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश ने अपनी झांकी का विषय भी चीतों की ऐतिहासिक वापसी को बनाया था। इस झांकी में न केवल राज्य की समृद्ध जैव विविधता को उजागर किया गया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई चीता पुनर्वास परियोजना की सफलता को भी उत्कृष्टता से रेखांकित किया गया था। झांकी में कूनो नेशनल पार्क और वहां बसे चीतों को दिखाया गया था, जिन्होंने मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के रूप में पहचान दिलाई है। गौरतलब है कि 2023 के सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को पुनर्स्थापित कर एक नया इतिहास रचा था। यह परियोजना भारत के वन्य जीव संरक्षण के व्यापक प्रयासों में एक मील का पत्थर मानी जा रही है। चीतों के सफल पुनर्वास ने मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी है। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
And coming back to the national capital, the Ministry of Information and Broadcasting is going to organize the inaugural World Audio Visual and Entertainment Summit or WAVES 2025 in the coming months. Before the event, the INB Ministry has launched WAVES Bazaar, which is a global e-marketplace. Speaking to Akashvani News, visual storyteller, writer, director and creative producer Saraswati Balgam said that Waves Bazaar is a groundbreaking platform designed to connect India's vast creative talent pool with international markets.
Waves, as you know, is part of the Ministry of Information and Broadcasting, but also now being undertaken very tightly and overviewed by the Prime Minister's office. The goal is basically to bring all the sectors, whether it's music, whether it's games, whether it's comics, visual effects and animation and AR and VR, anything that is compelling the youth, the content creators of India and the content creators of the world to come into this one big destination under this one big umbrella called the Waves Summit, which I think the dates and the location are going to be soon announced. We don't know the dates and the location yet. The biggest thing that has ever happened is that they've created Waves Bazaar, which is like an e-bazaar as well. So even if you can't physically make it, you're in any part of the world, you can either sell your projects or talk about your projects, or if you're a buyer, you can say that you're looking for a comedy film, or you're looking for an anime project, or you're looking for a comic book. And this way, you're attracting a lot of creators' economy. Creators' economy can be built on this basis. It creates a huge B2B kind of a thing, from idea to impact, from idea to investment. And that is basically the goal today that we also kind of discussed in the workshop, of how young talent with a little bit of time and energy can actually produce content, because at the end of the day, solid characters are the ones that are required to tell your projects, to tell your film and all that stuff. So that's what the bazaar is all about.
और अब बात पुस्तक मेले की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले में देश भर से बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। इस वर्ष मेले का विषय हम भारत के लोग हैं, जो भारत गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव को विशिष्ट रूप से दर्शा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार पुस्तक मेले में 50 से अधिक देशों के करीब 2000 प्रकाशक भाग ले रहे हैं।
इस वर्ष रूस के फोकस राष्ट्र होने के अलावा मेले में इटली, फ्रांस, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, स्पेन, सऊदी अरब, कोलंबिया और तुर्की जैसे कई देशों की भागीदारी देखी जा रही है। विश्व पुस्तक मेले में शैक्षणिक किताब, उपन्यास और प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन पर प्रकाशित किताबों के स्टॉलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए पवेलियन में भी माता पिता अपने बच्चों के साथ किताबों की खरीदारी कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में माई निचिकेता प्रकाशन के पीयूष अग्रवाल ने बताया कि उनके स्टॉल पर बच्चों के लिए उपलब्ध ऐसी किताबें हैं जिनके द्वारा बच्चों को सरल शब्दों में गीता, वेदों और उपनिषदों के पाठ पढ़ाए जा सकते हैं।
हम लोग बुक्स लिखते हैं बच्चों के लिए। जो आजकल के बच्चे हैं उनको फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट नहीं समझ पाते कि रामायण में क्या हुआ था, श्लोका सुनते हैं है पर उसका सही मीनिंग वो अपने लाइफ में अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो हमारा मेन गोल यही है कि बच्चे जो हमारी गीता, वेदांत, उपनिषद की फिलोसफी समझे एंड उसको अपने लाइफ में यूज करे।
नजफगढ़ के राजकिशोर प्रसाद ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वह हर वर्ष इस मेले का इंतजार करते हैं जहां उनके स्वयं की और उनके बच्चों की पसंद की किताबें उन्हें हमेशा मिलती है।
जब भी बुक फेयर लगता है प्रगति मैदान में यहां आता हूं और कुछ कुछ अपनी पसंद की बुकें, मेनली लिटरेचर और सारे ले जाता हूं और ये मेरे को हमेशा अच्छा लगा है और मैं ये इंतजार करता रहता हूं कब बुक फेयर लगे और मैं आऊं।
9 दिवसीय यह पुस्तक मेला भारत मंडपम के हॉल 2 से लेकर 6 में सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित है। मेले की टिकटों की बिक्री भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO ऑनलाइन कर रहा है। टिकट NBT इंडिया की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है तथा स्कूल छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। परिक्रमा के लिए आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और सारा बताएं कि व्यापार जगत में क्या हलचल है।
Well, benchmark domestic equity indices logged losses today. The 30 share index at Bombay Stock Exchange or Sensex dipped 213 points to close at 78,058. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 93 points to settle at 23,603. And if we talk about what's happening in the world of sports, well, Australian all-rounder Marcus Stoinis has announced his retirement from One-Day Internationals, or ODIs, just days after being named in the country's Champions Trophy. And however, the 35-year-old cricketer will remain available for selection in T20 Internationals. His decision comes ahead of Australia's final squad announcement for the Champions Trophy, which will take place by 12th of February. The tournament will be held in Pakistan and Dubai, beginning February 19. Stoinis, who was named the country's ODI Cricketer of the Year in 2018-19, has played 71 one-dayers and made 1,495 runs with 106 50s. His ODI career began against England in 2015 at Old Trafford, and he went on to be a part of Australia's World Cup winning squads in both the T20s, that is 2021, and ODI formats in 2023.
और अब सुनते हैं आजादी के सफर।
टुडे वी रिमेंबर इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्टिविस्ट मोतीलाल नेहरू, बोर्न ऑन द 6th of May 1861 इन आगरा। ही मैरिड स्वरूप रानी कॉल इन 1889। द कपल हैड अ सन जवाहरलाल नेहरू एंड टू डॉटर्स विजया लक्ष्मी पंडित and Krishna Nehru.
At the age of 46, Motilal presided over a provincial conference of the moderates held at Allahabad in 1907. He also actively participated in the Home Rule movement started by Annie Besant in 1916. The Pioneer newspaper conferred him the title Brigadier General of the Home Rule League. Motilal also launched a daily newspaper, The Independent, in 1919. Inspired by Mahatma Gandhi, he left his legal practice and joined the non-cooperation movement. A year later, he even established his own political outfit, Swaraj Party, along with C.R. Das. The primary aim of the party was to destabilize the British Raj through anti-government agitation within the chambers of the Central Legislative Assembly. It was seen as a political wing of the Congress.
In response to the formation of the Simon Commission, Motilal Nehru chaired the committee that prepared the Nehru Report in 1928. Following the rejection of the report, Motilal continued his struggle against the British rule by participating in the civil disobedience movement in 1930.
The same year, he gave up his residence, Anand Bhavan, to the Congress Party for use as its headquarters. Despite his poor health, Motilal participated in the movement and travelled to Gujarat to support Gandhiji's salt satyagraha. He was jailed for a couple of months and was released in light of his poor health. Motilal Nehru died a few months later on the 6th of February 1931. We salute the great freedom fighter.
We also remember freedom fighter Satkari Banerjee, alias Satu Babu, who died on 6th February 1937. Banerjee was born in 1892 in 24 Parganas, district of West Bengal. He was a member of the Jugantar Party and a close associate of revolutionaries like Atul Ghosh and Kulranjan Mukherjee. He was involved in the plan to obtain help from the Germans in Batavia for organizing an armed rebellion in India in 1916. He was arrested on 2nd August 1916 but released on 12th January 1920 in connection with the amnesty following the Royal Proclamation of December 1919.
After his release, Banerjee got in touch with Bhupendranath Datta, Jeevan Lal Chatterjee and other revolutionaries. He was put in charge of the Diamond Harbour Ashram, which was a recruiting centre for Bhupen Datta's party. In November 1924, he was arrested but released unconditionally in April 1928. He was arrested again and again for his revolutionary activities. He died in the Oli Camp prison on the 6th of February 1937. We salute the great revolutionary.
We also remember freedom fighter Shiv Narayan Tiwari, who was martyred on 6 February 1932. A resident of village Nunara, district Fatehpur, Uttar Pradesh, Shiv Narayan took part in the civil disobedience movement of 1930. Later, when the farmers' agitation over the non-payment of land revenue started in 1932, he actively joined it. On 6 February 1932, at the height of the agitation, the police and the tehsildars fired upon the agitators. The tehsildars' gunshot hit Shiv Narayan Tiwari, killing him on the spot. We salute the great son of soil.
We also remember Sheikh Mohammad Bakhsh, a resident of Delhi who participated in the First War of Indian Independence in 1857. He was charged with rebellion against British rule, convicted and sentenced to death. He attained martyrdom on the 6th of February 1858. We salute the great martyr.
और आज जयंती है कवि प्रदीप की. आज उनका पूरा नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था और उन्होंने साहित्य हिंदी साहित्य जगत और हिंदी फिल्म जगत के एक सुदृढ़ रचनाकार रहे. कवि प्रदीप ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे देशभक्त गीतों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है. उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में ये गाया गया था. तो उनकी लिखा हुआ एक गीत.
आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की.
वंदे मातरम वंदे मातरम.
उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है. जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है.
Today we are also remembering Bhupinder Singh, a very, very renowned singer of yesteryears who is predominantly known for his ghazals. And jab Bhupinder ka zikr aata hai to zahir si baat hai dil dhoondta hai phir wahi fursat ki raat din apne aap hi bajne lagta hai gaano mein.
जाना ये दिल ढूंढता है फिर वही.
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर।
नमस्कार।